तो आज हम जयानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। आज उनके तिवभाव तिथि है। तो श्रील जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के एक बहुत प्रिय शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद तो सबसे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क में तो पहले शिकागो में रहते थे, लेकिन बाद में तो उनका प्रचार शुरू किया उन्होंने न्यूयॉर्क में। और जब अपना आंदोलन वहां पर उन्होंने स्थापित किए थे, इसके बाद श्री प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए और वहां पर भी प्रचार उन्होंने शुरू किए थे। और वहां पर तो भी मंदिर स्थापित किए थे और वहां पर जयानंद प्रभु इस्कॉन में आए थे। और पहले तो हाँ वे ओहायो स्टेट में थे, जहां से सैन फ्रांसिस्को से जरा नए है, लेकिन बचपन से वहां पर थे। और विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किए थे और इसके बाद तो ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग तो कार्य तो करते थे। और कुछ समय के लिए भी टैक्सी ड्राइवर थे, क्योंकि वहां पर भी यहां पर हम भी देख सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो विद्यालय के बाद भी जॉब नहीं मिलता है और बहुत बार ये भी देखता है यहां पर भी वृंदावन में ये ब्राह्मण कुल के भी बंगाली जो है तो विद्यालय के बाद यहां पर आता है और रिक्शा वाला के रूप में काम करते थे। तो वैसे ही विश्वविद्यालय के बाद तो अलग अलग जॉब करते थे और टैक्सी भी चलाते थे। और जब प्रभुपाद तो ये सैन फ्रांसिस्को में थे, उनसे वहां पर मिले थे। और प्रभुपाद तो शुरुआत उनके पास तो ज्यादा नहीं पैसा था और किताबें भी नहीं थे उसी समय। तो कोई भक्त लोग जो बाहर काम करते थे उनको पैसे देते थे, वैसे ही जयानंद प्रभु काम करते थे वहां पर। और जो पैसे जो मिलते थे प्रॉपर को देते थे। तो जब पैसे की जरूरत था ये भक्ति रसमृत सिंधु के लिए, इस किताब के प्रकाश करने के लिए और भगवद गीता के लिए भी उसी समय $5,000 दिए थे। तो $5,000 बहुत पैसा है, उसी समय भी बहुत पैसा था $5,000। तो प्रभुपाद तो बहुत संतुष्ट थे उनसे। और कभी कभी तो जब क्लास देते थे श्रीमद भागवतम सुबह, और हमें ऐसे पूछते थे जयानंद कहां पर है, अगर वे वहां पर नहीं थे तो पूछते थे जयानंद कहां पर है, उनको बुलाना है यहां पर। तो क्यों, क्योंकि प्रिय भक्त थे। और कुछ समय के बाद अपना जो टैक्सी चलाना छोड़ दिया और मंदिर में आए। और क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो थे, भक्त थे और अलग अलग कार्य में बहुत निपुण थे और भी नम्र थे। उनके बहुत विशाल शरीर भी थे और शक्तिशाली थे भौतिक दृष्टि से, और लेकिन भी नम्र थे, बहुत भी नम्र थे। सब प्रकार की सेवाएं करते थे, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना पोंछा लगाना है ये भी करते थे। और उनका जन्म 1940 हुआ और उनका ये तिरुभाव दिवस तो तिथि के अनुसार न, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पहले मई 1977 तो उनका देहांत हुआ। तो जब सैन फ्रांसिस्को में थे और बाद में भी बर्कले में भी आए थे, वहां पर भी मंदिर में रहते थे और प्रेसिडेंट के रूप में भी हमेशा भी नम्र भाव में रहते थे। एक बार कोई लोग आए थे तो जो मंदिर में भी पहले से भी आए थे और ये सोचे थे कि हमको मंदिर में शायद रहना है, तो उन्होंने सोचे कि ठीक है प्रेसिडेंट से मिलेंगे, बात करेंगे। तो उसी समय वहां पर पहुंच गए और कोई नहीं था मंदिर उसी समय, सब बाहर गए प्रचार करने के लिए, किताब वितरण के लिए। तो उसी समय देखा था कि एक गाड़ी के नीचे कोई आदमी तो है, तो गाड़ी तो ठीक करने के लिए नीचे कोई है, तो उनसे पूछे सुनो भाई प्रेसिडेंट कहां पर है, यहां के प्रेसिडेंट। तो गाड़ी से नीचे निकल गया और पूरा शरीर तो क्योंकि है ना, तो गाड़ी के नीचे तो थोड़ा सा कल हो गया था और बोला मैं प्रेसिडेंट हूं मंदिर के। और सोचो वाह वाह, और ये बहुत सरल सेवा भी करता है प्रेसिडेंट। तो हाँ, तो देखा ये बहुत विनम्र है, तो प्रेम से बात करते थे। तो ये लोग उन्होंने तो सोचा कि बहुत विनम्र है ये प्रेसिडेंट, हमको यहाँ पर रहना है। तो मंदिर में पहुंच गए और वहां पर सेवा करते थे। और जैसे जो क्रूरदान जो है जो मंदिर में अलग अलग जगह पे ये भी बाहर फेंकना है, तो मतलब पशु देश में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर तो अलग, तो यहाँ पर तो कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है क्रूर के लिए, क्रूरदान भी है रास्ते में, लेकिन अब देख सकता है तो कुछ क्रूरदान में है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्रूरदान के आसपास में फेंकता है। तो चेष्टा नहीं कर रहे हैं अंदर रखने के लिए, फेंकने के लिए, जो भी है रास्ते पे भी डालता है, लेकिन पश्चिमी देश में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे करते हैं पुलिस पकड़ता है तो पैसे देने पड़ता है। तो वहां पर क्रूरदान में डालना है। और तो और ये भी है कि जैसे प्लास्टिक बैग के लिए भी एक तो छोटे से क्रूरदान है, सब कुछ डालता है, लेकिन इस अलावा भी बहुत सारे बड़े कंटेनर है, इसमें एक तो शीशे के लिए है, एक कागज के लिए है और एक तो प्लास्टिक थैली के लिए है, तो लाख से अच्छा तरह से रखता है। तो ये तो मंदिर के जो क्रूरदान जो है विभाजित करके जो प्लास्टिक है एक बड़े कंटेनर में बाहर फेंकते थे और शीशे वाले में फेंकते थे। तो ये भी नम्र काम करते थे प्रेसिडेंट के रूप में रहते हुए, और सब भक्त लोग बाहर बेचते हैं प्रचार करने के लिए, ये किताब वितरण के लिए, और सारे देखभाल करते थे मंदिर में और सारे सेवाएं करते थे। पुजारी भी रखते थे, एक दो पुजारी और रसोई में एक भी, और कुछ समय के लिए भी खुद खाना बनाते थे भक्त लोग के लिए। तो भी नम्र थे। और कभी कभी भक्त लोग कारागार में जाते थे प्रचार करने के लिए, जैसे हरिदास ठाकुर भी। तो एक बार और क्या करते थे, वहां पर कीर्तन करते थे। यहां पर भी आजकल भक्त लोग जा रहा है, प्रचार करता है और कीर्तन करता है, प्रसाद का वितरण करते थे। तो ये भी करते थे, कारागार में जाते थे दो चार भक्त के साथ प्रवचन करते थे थोड़ा सा, और कीर्तन करते थे और प्रसाद सबको देते थे, खिलाते थे कारागार में। एक बार क्या हुआ, एक नए जगह पे जाने के लिए तैयारी करते थे और जयनंद खुद हलवा बनाए थे और उनको बहुत अच्छा लगता था पीनट बटर हलवा, मतलब ये जो मूंगफली के जो है मूंगफली मिश्रित मक्खन से हलवा बनाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और खिचड़ी भी बनाए थे उसी दिन और तैयारी किया वहां पर जाने के लिए। तो भगवान को लगाए थे हलवा और खिचड़ी और गाड़ी में बैठ गए। और रास्ते में जयनंद को भूख लगता था, मेरे को बहुत भूख लगता है और दूसरे भक्त को भी, हमको भी भूख लगता है, तो रस प्रसाद ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो शुरू किया प्रसाद पाना। उनको बहुत अच्छा लगता था, वाह बहुत बढ़िया है आज का प्रसाद, क्योंकि जयनंद भी बनाते थे तो खूब पेट भर के खाते थे, तो मतलब थोड़ा सा बाकी था प्रसाद। तो इसके बाद पक के पेट भर के सब भक्त लोग सोचा कि हमने तो बहुत बहुत बड़े गलती किया है, ये तो वितरण के लिए है और हमने खुद पा लिया, गलती किया है, बहुत बड़ी गलती हो गया है। लेकिन फिर भी तो जो हो गया तो सो हो गया, तो जो हो गया तो आगे जाना है, कम से कम कीर्तन करेंगे और प्रवचन करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या करें। वहां पर पहुंच गए करगार में और वहां पर द्वार में पहुंच गए और द्वारपाल वहां पर पूछा, अच्छा तो क्योंकि पहले से तो बात करना था कि हम वहां यहां पर आएंगे प्रचार करेंगे तो सा बताएंगे कुछ। हाँ ठीक है, तो वहां पर पहुंच गए और बोला ठीक है अंदर आइए, लेकिन ये तो है तो आपके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि खाना वितरण करना तो हमारे कारगार में मना है, प्रसाद वितरण तो वहां पर मना था, उनको नहीं मालूम था, लेकिन भगवान की इच्छा से तो ऐसा हो गया था कि पा लिया। और उसने तो बोला हाँ ना हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा अल्पमात्र कुछ बाकी था, तो अंदर गया प्रचार किए थे। और तो जयनंद प्रभु हमेशा सरल विधि से रहते थे और अपने लिए खर्च नहीं करते थे, दूसरे भक्त लोग के लिए मंदिर के लिए अत्युत्तम वस्तु अर्पण करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, लेकिन अपने लिए ज्यादा खर्च नहीं करते थे, बहुत काम। और तो काम करने के लिए तो धोती तो पहनते थे मंदिर में, लेकिन काम करने के लिए कभी कभी पैंट भी तो पहनते थे, इन अगर तो गाड़ी ठीक करना है उसी समय तो खराब हो जाता है धोती, तो पैंट पहनते थे। तो एक बार एक तो भक्तों को बोला था कि आपके पैंट जो है ये बहुत पुराना हो गया, कृपा करके दुकान में तो जाए और दूसरा पैंट खरीद लीजिए। तो उन्होंने सोचा ठीक है जाएंगे, लेकिन वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सोचा ये तो अपने लिए खर्च करना मेरे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर गए तो एक पैंट ले लिया, उन्होंने सोचा ठीक है पहन लिया, उन्होंने सोचा वो तो खर्च करना तो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता अपने लिए, तो मैं ऐसा तो चले जाऊंगा बिना पैसे दे के चले जाऊंगा सोचा। तो इसके बाद तो बाहर जाने वाले थे और जो जहां पर है ना तो दुकान में थे, बड़ा दुकान था जैसा अभी भी मॉल है, तो शुरू से वहां पर बहुत सारे मॉल है पश्चिम तो देश में, जैसा आज अभी भी यहां पर तो मॉल भी बनाता है दिल्ली में गुड़गांव में और आगरा में भी है, यहाँ पर तो नहीं है वृंदावन में, लेकिन रास्ते पे भी है आगरा की ओर। तो बाहर जाने वाले थे तो वहां पर तो भी लोग रखते हैं, उसी समय कैमरा नहीं था लेकिन आजकल सब दुकान में कैमरा है, तो उसी समय तो लेकिन कैमरा नहीं था उसी समय, लेकिन लोग देखते थे अगर कोई चोरी करना चाहता है करता है, और देखा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये पैंट तो ले लिया और जाना चाहता है बिना पैसे दे के, तो उनको पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। तो इसके बाद तो जज के पास भी गया और कोर्ट में, और तो उसी समय जज पूछा था आपने क्यों ऐसे किया है, ठीक नहीं आपको तो भी मालूम है, और धर्म और एक धार्मिक संस्था में है, भगवान को मानता है और आपको भी मालूम है झूठ बोलना ठीक नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं है, आपने क्यों ऐसे किया है? तो उन्होंने बोला है कि हम तो सब कुछ तो जो मिलता है भगवान की सेवा में लगाता है, और लेकिन आपने भी अपने लिए खाच खाने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि जो पैसा मिलता है भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन आपने लिए खाच खाने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद रोते हुए भी बोला, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि वास्तव में सब सामान तो भगवान का ही है, है ना, जो दुकान बड़ी दुकान वास्तव में ये भगवान का भी है, इसलिए मैंने सोचा भगवान का ही है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से तो ठीक नहीं है, मैंने गलती किया है। मैं मानता हूं जो भी दान देना चाहता है मैं तैयार हूं, स्वीकार है जो दान देना है, लेकिन रोते हुए भी बोलते थे क्योंकि अपने लिए खर्च करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा ये ले लूंगा और चले जाऊंगा। तो जज ने देखा कि बिल्कुल सत्य कहता है, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, माफ करता है और अब जा सकता है, कुछ पैसे देना और दान देना उनको जरूरत नहीं है। तो दान नहीं मिले था, और ऐसा भी पुलिस वाले भी बोला हाँ हाँ अब तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और दुकानदार जो भी थे वहां पर ये भी बोले, उन्हें बोला ठीक है माफ कर देना है। तो और ये भी बोलते थे मेरी गलती को तो हो गया है कि आपको पकड़ लिया, आप तो एक साधु है, भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा में लीन है, और इसलिए तो सब ठीक हो गया था। और तो 1968 सैन फ्रांसिस्को में पोपा ने बोला कि हमको ये रथ यात्रा वहां पर जगन्नाथ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उन्होंने बोला कि हमको जैसे जगन्नाथपुरी में एक प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा, तो जगन्नाथ रथ में जाता है, अपना मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाता है, गुंदीचा मंदिर, भक्त लोग बताए गए थे और बताते थे, उन्होंने बोला हमको ये भी यहां पर करना है और रथ बनाना है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसमें जाएंगे रास्ते पे यहां पर सैन फ्रांसिस्को में, और प्रसिद्ध जगह है सैन फ्रांसिस्को में, तो अलग अलग बहुत बड़े शहर है जैसे एलए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को भी प्रसिद्ध है, वहां बहुत सारे लोग जो है ना, जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बॉलीवुड के लोग ज्यादा से ज्यादा मुंबई में रहता है, लेकिन वहां पर हॉलीवुड सबसे प्रसिद्ध जगह है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां पर भी रहते हैं लेकिन आसपास में रहते हैं, लास वेगास या लॉस एंजल्स या सैन फ्रांसिस्को भी में भी वहां पर रहते हैं, तो दानवीर लोग वहां पर, पुरुष वहां पर रहता है। तो वहां पर मंदिर के आसपास में तो रथ यात्रा मनाना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला। तो उसी समय भी प्रभुपाद ने जयानंद को उन्होंने जिम्मेदारी दिए थे ये रथ बनाने के लिए, दूसरे भक्तों के साथ भी थे, तो उनको उन्होंने भी बताया कि कैसे बनाना है। लेकिन क्या हुआ, जैसे प्रभुपाद तो उन्होंने उनको बताए थे ऐसे तो लगभग किए थे, लेकिन पाए के बारे में, व्हील के बारे में थोड़ा सा उन्होंने सोचा ये तो ऐसे करना ठीक नहीं है जो प्रभुपाद बताए थे, तो उन्होंने सोचे दूसरे तरीके से बनाना है, क्योंकि गलती हो गया भक्त लोग के। तो उसी समय तो सब तैयार था और प्रभुपाद भी थे वहां पर रथ में, जगन्नाथ बलदेव भी, क्योंकि थोड़ी सी तो उनके प्रभुपाद का आदेश का पालन नहीं किए थे, इस फलस्वरूप जो पाए जो व्हील के थोड़े से गड़बड़ हो गया था, गोल सा तो बनाना था जैसे पुरी में, लेकिन ऐसे कुछ अलग से तरीके से बनाए थे, इसलिए ऐसा हो गया था, गोल नहीं था, ऐसा था, ऐसा करके जैसे सात कोण या आठ कोण के जो है, ऐसा थोड़ा सा थोड़े देर के बाद ऐसा हो गया था, और अच्छे तरह से तो आगे जाना मुश्किल था और पूरा रात ऐसा हिलते थे और प्रभुपाद भी जगन्नाथ बालादेव भी उनको पकड़ना था भक्त लोग और लेकिन प्रभुपाद थोड़ा सा असंतुष्ट है उसी समय लेकिन फिर भी किसी प्रकार से आगे चलते चलते तो पहुंच गए थे और प्रभुपाद फिर भी अंत में संतुष्ट है लेकिन उन्होंने भी बोला था कि आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया था तो ये भी सब भक्त लोग मान गए और आगे से तो जैसे प्रभुपाद ने बोला ऐसे भी किया है और उसी समय हर साल करते थे सैन फ्रांसिस्को में यह रथ यात्रा अच्छा तरह से और 1975 प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे उन्होंने बोला कि हमको न्यूयॉर्क में भी रथ यात्रा मनाना चाहिए लेकिन न्यूयॉर्क में तो प्रसिद्ध जगह है और वहां पर बहुत भीड़ है और वहां पर कारण तौर से मुश्किल था लेकिन फिर भी तो अनुमति लेना सरकार से यह भी मुश्किल काम था भक्त लोग भी चेष्टा कर रहे थे और वहां पर भी तो आए थे जैनांदा लेकिन उसी समय भी तो उनका तबीयत ठीक नहीं था ल्यूकेमिया उनके ये एक और उसके जो उसी समय इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं था तो उन्होंने उनको मालूम था कि मैं तो शरीर छोड़ दूंगा मुझे तो छोड़ना है शरीर थोड़ी देर के बाद लेकिन ये रथ यात्रा ये हमको तो जरूर करना चाहिए ये न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के आदेश है प्रभुपाद की इच्छा है और सबसे बड़े शहर है पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जगह है उसी समय तो था आजकल भी न्यूयॉर्क तो बहुत प्रसिद्ध जगह है और तो होना चाहिए रथ यात्रा तो सब तैयारी किए थे वहां पर और 1976 तो रथ यात्रा हुआ वहां पर और अनुमति भी मिला भगवान की कृपा से उसी समय जो जैसे यहां पर ये क्या डीएम है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर भी तो बदल गया और नया आया और किसी प्रकार से वहां पर भक्त लोग गए फिर से और उनका तो मतलब उनसे मिलना तो मुश्किल काम है लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उनसे बेंट तो हुआ और अनुमति भी दिया उन्होंने बोला ठीक है मुझे नहीं मालूम है क्यों अनुमति देता हूं मैं सोच रहा हूं महसूस कर रहा हूं दिल से कि मुझे अनुमति देना है तो अनुमति दिया है खाने के लिए तो ये उत्सव मनाने के लिए तो और उसी समय तो प्रभुपाद भी वहां पर पहुंच गए और तो 55th स्ट्रीट बहुत प्रसिद्ध वहां पर बहुत सारे जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे तो रास्ता है लेकिन वहां पर तो 55th स्ट्रीट मतलब 55 नंबर रास्ता है ये प्रसिद्ध है तो वहां पर बहुत सारे जब उत्सव है वहां पर मनाता है जब कोई यात्रा है तो वहां पर मनाते थे और वो पर बहुत प्रसन्न थे संतुष्ट थे उसी समय और तो जैनानंद भी थे वहां पर नाचते थे वहां पर और लेकिन क्या हुआ 2-3 दिन से पहले एक भक्त ने देखा था कि जैनानंद उनका तबीयत ठीक नहीं है एक कुर्सी में बैठ गए और तो दूसरे भक्त ने पूछा क्या हो गया जैनानंद प्रभु तो उन्होंने बोला मेरे तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने बोला क्या है क्या समस्या है तो उन्होंने बोला और दिखाया हमारे ल्यूकेमिया ये रोग मेरे पास है और उन्होंने देखा और लेकिन उन्होंने बोला कि दूसरे भक्त को मत बताओ रथ यात्रा के बाद बता सकते लेकिन अभी किसी को मत बताना है तो उन्होंने भी बोला ठीक है किसी को मत बताऊंगा तो लेकिन रात के बाद तो दूसरे को बताए थे और सब भक्त लोग उनके पास गए और देखा कि उनके तबीयत ठीक ना है और मरने वाले थे। तो उसी समय तो हॉस्पिटल में भी गए और लेकिन तो किसी प्रकार से तो आगे जाते थे। ये 76 में रथ यात्रा तो हुआ और 1977 में पहले माह उसी ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में उनका देहांत तो हुआ, शरीर ने छोड़ दिया। और लेकिन इससे पहले उनके पास भी पैसा था तो दो महीने से पहले भी जब प्रभुपाद आए थे उनको प्रभुपाद फिर से उन्होंने प्रभुपाद को फिर से $5,000 दिए थे क्योंकि उन्होंने सोचा भी हम छोड़ने वाला है और इलाज के लिए पैसे देना तो जरूरत ना है अभी, तो इसलिए 5,000 जो पैसों के पास था 5,000 प्रभुपाद को दिए थे। तो और इसके बाद तो पहले माय तो शरीर छोड़ दिए और इसके बाद प्रभुपाद ने जब सुना कि छोड़ दिया है शरीर, प्रभुपाद ने बोला कि ये जयानंद बहुत बड़े भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, इसलिए हर साल उनके तिरुवप तिथि के दिन उनको एक उत्सव मनाना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, भक्त लोग को प्रसाद देना है, मतलब एक फीस्ट होना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। और उन्होंने भी बोला पंचिका में ये वैष्णव कैलेंडर जो है ये उनका नाम लिखना है कि आज उनके तिरुवाप तिथि है। और इसलिए उसी समय से हर साल हर मंदिर में इस्कॉन में उनके तो तिरुवाप के बारे में तो उनके जीवन चरित्र उनके जीवन के बारे में भक्त लोग कुछ बताता है हर मंदिर में इस्कॉन में। तो क्योंकि प्रभुपाद के प्रिय भक्त थे और हमेशा भी नम्र भाव में रहते थे और उन बहुत सारे भक्त लोग उनसे प्रभावित थे और मंदिर में आए थे क्योंकि शुद्ध वैष्णव थे, तो जो उनके संग में आए थे तो इनसे प्रभावित होते हुए बहुत सारे भक्त लोग बहुत सारे लोग मंदिर में आए और शुरू किया अपना आध्यात्मिक जीवन। तो शिलेंद्र जयानंद प्रभु की तो शुद्ध वैष्णव के बारे में बोलना ये हमारे कर्तव्य है। और ये भी जब उनसे उनके जीवन चरित्र से सुनता है तो इससे शुद्ध हो जाता है और जो कुछ कर रहा है उदारनाथ के लिए भी है तो बहुत कुछ सीख सकता है जब हम शुद्ध वैष्णव के बारे में सुनता है। जैसे उनकी विनम्रता और जैसे वैष्णव के 25 गुण है तो शुद्ध वैष्णव के पास ये गुण जो है प्रकट हो जाता है। कृष्ण जैसे जो सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त के 25 में से कृष्णाई के शरणम पूर्ण रूप से कृष्णा की सेवा में लीन है, तन मन वचस से हमेशा सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाता है और विनम्र है तो इंद्रिय वश में रखता है तो हमेशा सत्य बोलता है और इंद्रिय वश में रखता है तो सब ये जो गुण जो है भक्त के गुण शुद्ध वैष्णव के उनके जो जीवन में प्रकट हो जाता है। और जो हमारे प्रभुपाद के शिष्य जो रसोई में सेवा करता है भुवनेश्वर प्रभु ये भी हर साल बहुत सालों से तो पीनट बटर हलवा बनाता है और ये पीनट बटर हलवा सब भक्त लोग को अभी दे देंगे। हमारे माँ इंग्लिश क्लास में भी वहां पर भक्ति सिद्धांत था, दूसरे प्रभुपाद शिष्य है जो बहुत सालों से यहाँ पर आरती कर रहा है, ये भी उनके साथ भी रहते थे कुछ समय, जयनंदा के साथ भी रहते थे, उनको अच्छी तरह से मालूम है। और जो मैंने अभी बताया है ये सब उनसे तो सुना है, जो कुछ ये बताते हैं बहुत बार, तो हर साल मैं तो सुनता हूं इसलिए मैं बता सकता हूं कुछ। यह है, ये तो परंपरा तो ऐसा है। और भक्ति से प्रभुपाद ने भी उन्होंने एक कई बार उन्होंने बताए थे कि वो भक्ति सिद्धांत में भी एक बोला है, राधकुंड पे जहां पर आए थे प्रभुपाद ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए, एक बार सब भक्त लोग गए तो दर्शन लेने के लिए, लेकिन भक्ति सिद्धांत अपना भजन कुटीर में थे और परिक्रमा के लिए नए गए उसी दिन। तो प्रभुपाद ने सोचा ठीक है भक्त लोग जा रहा है तो भगवान के बारे में तो लीला स्थल जहां पर भी है भगवान की लीला का श्रवण करने के लिए तो जाना तो है, लेकिन फिर भी जहां पर गुरु महाराज है तो उनसे कुछ सुना ये और अच्छा है, ये अति उत्तम होगा। तो उनके गुरु महाराज के पास गए और से सिर्फ एक दो उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत के भी वहां पर थे, चमर सेवा एक करते थे और दूसरे कोई दूसरे भक्त दूसरी सेवा करते भक्ति सिद्धांत के लिए। तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद की कुछ प्रश्न पूछेंगे और वहां पर गए भक्ति सिद्धांत के पास, प्रश्न पूछा और भक्ति सिद्धांत अपने शिष्य को बताते थे कि भाई बाबू हमारे प्रभुपाद के संन्यास लेने से पहले ये भक्ति सिद्धांत ये नाम भी दिए थे भाई चरण नारबिंदा, तो भाई बाबू ये अच्छा तरह से सुनता है, उन्होंने बोला अपने दूसरे शिष्य को। और प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं अच्छा तरह से सुनते थे इसलिए मैं अभी अच्छा तरह से बोल सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बार सुना था इसलिए मैं अभी कुछ बता सकता हूं के लिए उनके बारे में, तो इसलिए ये भी अभी तो प्रसाद बरतेंगे। तो दो मिनट बाकी है, तो काल भी तो हमको मालूम है ये नृसिंहदेव के अविवाह तिथि है, ये भी मनाएंगे, इसलिए दो तीन श्लोक का चरण करूंगा, क्योंकि यह कि शुरुआत में तो राधा माधव इष्ट देव तो है श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णा, और महाप्रभु भी हमको दिखाने के लिए आया, भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आया है हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना चाहिए। तो निरंतर महामंत्र का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको भी तो उपदेश दिया है शिक्षाष्ट कम में, और अपने शिष्य को भी चे गोस्वामी को भी बताए थे बहुत कुछ उपदेश दिए थे, और उन्होंने भी चे गोस्वामी को विशेष करके रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को आदेश दिए थे ये वैष्णव ग्रंथ लिखने के लिए, और इसमें सब महाप्रभु के भी जो भाव है इसमें तो दिया गया है। तो और महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत गए और बहुत सारे तीर्थ स्थान का दर्शन और किए थे, और उसी समय भी जहां पर प्रसिद्ध नृसिंहदेव मंदिर भी है वहां पर गए थे, और जब मंदिर में थे भी उसी समय अलग अलग नृसिंहदेव मंत्र का उच्चारण करते थे, जैसे प्रसिद्ध जो हम रोज रोज गाता है नृसिंहदेव के स्तुति सुबह मंगलाती के समय, ठाकुर जी के मंगलाती के बाद नृसिंहदेव के जो स्तुति जो है इसका उच्चारण हम करते हैं, उन्होंने वो भी नृसिंहदेव के सामने इसका उच्चारण करते थे। और एक और प्रसिद्ध श्लोक जो मायापुर में भी नृसिंहदेव के वहां पर मंदिर के जो सामने, तो इसका उच्चारण करते हैं, श्री नृसिंह जय जय नृसिंहदेव प्रहलाद देश जय पद्म मुख पद्म भृंग जय। मेरे साथ बोलिए, श्री नृसिंह जय जय नृसिंहदेव प्रहलाद देश जय पद्म मुख पद्म भृंग। हरे कृष्ण। तो काल और नृसिंहदेव के बारे में सुनेंगे, काल भी तो काल भी सुना है कुछ नृसिंहदेव के बारे में, काल क्लास नृसिंहदेव के बारे में भी था, इसलिए आज भी थोड़ा से कम दो तीन श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। जैसे एक और प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सारे है श्लोक, नृसिंह का बच्चा भी है, दो नृसिंह का बच्चा है, एक ब्रह्मांड पुराणक है जो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन एक दूसरे संहित से है, और ये शिल भक्ति सिद्धांत है, इसका उच्चारण भी करते थे कभी कभी और अपने शिष्य को दिए थे जब सन्यासी लोग थे, जब प्रचार करते थे और जब पश्चात देश में भी गाए थे, दो चार उनके सन्यासी जैसे बोन महाराज और दूसरे दो तीन महाराज गए थे वहां पर पश्चात देश में, उसी समय भक्ति सिद्धांत उनको ये नृसिंह के वचन दिए थे और उनको बोला था भी ये नृसिंह के वचन को चारण करना चाहिए रोज रोज आपके राष्ट्र के लिए, क्योंकि है ना मलेच्छ देश है, बहुत सारे यहाँ पर राक्षस, छोटे से राक्षस है, बड़े राक्षस जैसे पहले तो ना है। तो और एक महामंत्र नृसिंह महामंत्र है हमारे, जो सबसे अलग अलग महामंत्र है लेकिन सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण महामंत्र जो ये है, जो हम इसको उच्चारण रोज रोज करता है, जप करता है, कीर्तन में भी इसको उच्चारण करते है, लेकिन एक नृसिंह महामंत्र है, इसका उच्चारण भी करेंगे। ओम उगम विराम महाविष्णु ज्वारतम सर्वतो मुकाम से निशंग विष्णुम बदम मित्यु मित्युम नमाम्यहम्। अब मेरे साथ बोलिए जिसको मालूम है, ओम उगम विराम महाविष्णु ज्वारतम सर्वतो मुकाम निशंग विषम बदम मित्यु मित्युम नमाम्यहम्। अच्छा ज्यादा भक्त लोग को नहीं मालूम है ये, हा? तो बाद में सीख सकता है, ये भी महत्वपूर्ण मंत्र है। तो हाँ, तो दूसरे बहुत सारे भी है, तो शायद जो काल क्लास दे देंगे दो चार दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे आशा है। नृसिंहदेव भगवान की जय, जयनंद प्रभु की जय, शिलोपाद की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल महाप्रसादम की जय, हरे कृष्णा।